नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से फर्जी और एआई से निर्मित सामग्री का जिम्मेदारी से उपयोग करने और उसका स्रोत स्पष्ट करने को कहा। देश के विभिन्न हिस्सों में चार दिवसीय छठ पूजा समारोह शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। भारत ने पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बंद करने को कहा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और दक्षिणी राज्यों के तटीय इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। और क्रिकेट में भारत ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और प्रचार प्रतिनिधियों से चुनाव के दौरान कृत्रिम रूप से और एआई जनित सामग्री का जिम्मेदारी से उपयोग करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
आयोग ने ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित या साझा करने पर भी रोक लगाने का आह्वान किया है जो गैर कानूनी हो और किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज को उसकी सहमति के बिना गलत तरीके से प्रस्तुत करती हो। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए इस तरह की किसी भी सामग्री को हटाने के लिए 3 घंटे का समय भी अनिवार्य किया है। राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर सत्यापन के लिए निर्माता के विवरण और तिथि और समय सहित सभी एआई जनित अभियान सामग्रियों का रिकॉर्ड भी रखना होगा। समाचार कक्ष।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गए हैं। इस चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी दलों के स्टार प्रचारक लगातार रैलियां कर रहे हैं। प्रचार के दौरान विकास, कानूनी व्यवस्था, बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 127वां एपिसोड होगा। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम के जरिए प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। 4 दिन तक चलने वाला यह पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है। प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक ये पर्व समूचे देश और विश्व में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। पर्व के दूसरे दिन खरना होता है। खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने व्रत रखने वालों से सभी श्रद्धालुओं को भक्तिभाव को नमन किया है। वो गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में छठी मैया से सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। रेलवे ने छठ पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त संख्या के बीच देशभर में सुगम और सुरक्षित यात्रा के व्यापक प्रबंध किए हैं। एक रिपोर्ट।
त्योहारों के बाद अपने कार्यस्थलों पर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 6,181 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अगले 3 दिन में 900 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां संचालित होंगी। रेलवे ने बताया है कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के 30 प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त कोच तैनात किए गए हैं और मौसम को ध्यान में रखते हुए होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। छठ पर्व के दौरान सुचारू संचालन बनाए रखने के लिए इन स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, सीसीटीवी निगरानी और यात्रियों के लिए अन्य प्रबंध किए गए हैं। इस बीच पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया स्टेशनों पर भी किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा बूथ बनाए गए हैं। स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों, यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों और मोबाइल अनारक्षित टिकटिंग सुविधाओं के माध्यम से यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहायता बूथों को सुदृढ़ बनाने और कतारों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के अपने अवैध कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बंद करे। उन्होंने कल 80वें संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर आयोजित खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री हरीश ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर हमेशा ही भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग रहेगा। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने समय की कसौटी पर खरी उतरी देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक रूपरेखा के अनुरूप अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है। श्री हरीश ने संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हुए वसुदेव कुटुम्बकम के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर बल दिया, जिसमें सभी के लिए न्याय, गरिमा और समृद्धि सुनिश्चित होती है। सरकार ने सोशल मीडिया चैनलों पर प्रसारित उस वीडियो संदेश का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि कई भारतीय अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की हिरासत में हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि यह रिपोर्ट फर्जी है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और गुजरात में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी अगले दो दिनों तक मूसलाधार बारिश की अनुमान व्यक्त की गई है। कल आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ। आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाके बेहद खराब से खराब श्रेणी में आ गए हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच क्लाउड सीडिंग के माध्यम से पहली बार कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। पुरुषों के क्रिकेट में भारत ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया है। इससे पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 46.4 ओवर में 236 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जिससे भारत के लिए 237 रनों का टारगेट मिला। जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देशभर में नागरिकों को लाभ हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधारों से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
इन जीएसटी सुधारों से हरियाणा की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ऑटोमोबाइल, कपड़ा, उर्वरक, इस्पात, डेयरी और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी की दरों को कम कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल और उनके कलपुर्जों पर जीएसटी 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। जीएसटी कम होने से वाहनों की कीमत कम हो गई है, इससे वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई है और राज्य का निर्यात भी बढ़ा है। इसके साथ ही कृषि मशीनरी और उर्वरकों पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, इससे कृषि लागत में कमी आई है। हरियाणा में सोनीपत, करनाल और पानीपत में सहकारी समितियों में डेयरी उत्पादों पर कम दरों से सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है और रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में हरियाणा के किसान भीम मलिक ने नए जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने इससे नए ट्रैक्टर की खरीद पर लगभग 1,25,000 रुपए की बचत की है।
सरकार ने जो ये राहत जीएसटी की दी है तो बहुत अच्छा कार्य किया है। एक ट्रैक्टर के साथ 1.25 लाख रुपए का फायदा होया। मेरे को इतना फायदा होया तो पूरे देश को तो कितना फायदा होगा। छोटी बड़ी चीजें सभी में फायदा है, पूरी जनता को फायदा है, गरीब से अमीर तक सबको फायदा है।
नए जीएसटी सुधारों से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। जीएसटी 2.0 के अंतर्गत राज्य में रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई है। भानु की रिपोर्ट के
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि देश में अब 819 मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने कहा है कि देश में स्नातक चिकित्सा सीटें अब 51,000 से बढ़कर 1,29,000 हो गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के 50वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की संख्या भी बढ़कर लगभग 78,000 हो गई है। मलेशिया कल से क्वालालंपुर में समावेशिता और स्थिरता विषय पर अन्य शिखर सम्मेलनों के साथ 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सभी आसियान नेता शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान और सात संवाद भागीदारी अर्थात ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आसियान प्लस वन शिखर सम्मेलन शामिल है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से फर्जी और एआई से निर्मित सामग्री का जिम्मेदारी से उपयोग करने और उसका स्रोत स्पष्ट करने को कहा। देश के विभिन्न हिस्सों में 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह शुरू। भारत ने पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बंद करने को कहा है। मौसम विभाग ने आज से गुजरात और दक्षिणी राज्यों में तटीय इलाकों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।